शांति। हमारा बाबा बेहद का बाबा है और बेहद के बाबा के हम सभी बेहद के बच्चे हैं। बाबा हमें जो भी बातें सिखाता है बेहद की बातें सिखाता है, और उन बेहद की बातों में एक बेहद की बात है, बेहद की वैराग्य वृत्ति। दुनिया में भी लोगों को वैराग आता है, लेकिन वो हद का वैराग होता है, और कई बार तो ऐसा वैराग होता है कि उसको वैराग कह ही नहीं सकते। जैसे कोई आदमी बीमार हो गया, डॉक्टर ने कहा थोड़े दिन खटाई मत खाना, अब बीमारी ठीक हो जाएगी तो खटाई खानी शुरू कर देगा, इसको तो वैराग नहीं कहेंगे, मजबूरी थी या परिस्थिति थी इसलिए छोड़ दिया, ना इसको त्याग कहेंगे ना इसको वैराग कहेंगे। एक दूसरा वैराग होता है जिस चीज़ से दुख मिले, धोखा मिले, उस चीज़ से भी अपन मुंह फिरा लेते हैं थोड़ी देर के लिए, अंदर अंदर उसकी याद आती रहती है, लेकिन ऊपर से ऐसे दिखावा करते हैं कि जैसे अपने को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, उसको भी बाबा कहते हैं अल्पकाल का वैराग है। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को बेहद का वैराग सिखाया, जिसमें बाबा कहते हैं कि देह सहित, देह की दुनिया, देह के पदार्थ, देह के संबंध सबको भूल जाओ और आत्म स्थिति में टिक करके एक बाबा को याद करो। तो जो परिस्थितिवश वैराग आता है, उसकी एक बात मुझे याद आ रही है। एक भाई था, उसको बढ़िया बढ़िया खाना खाने का शौक था। अब घर में भोजन जब भी बनता था तो वो झगड़ा बहुत करता था और एक ही धमकी देता था कि अगर तुम मुझे बढ़िया खाना नहीं खिलाओगे ना तो मैं सन्यासी बन जाऊंगा। अब घर वाले बेचारे बढ़िया से बढ़िया बनाते थे, फिर भी उसको कोई ना कोई कमी दिख जाती थी। फिर कह देता था आज सब्जी अच्छी नहीं है, आज चपाती अच्छी नहीं है, तुम लोग खाना बढ़िया नहीं खिलाते हो, देखना मैं सन्यासी बन जाऊंगा। तो घर वाले सुन सुन के दुखी हो गए। तो एक दिन वो बहन एक सन्यासी के पास गई, जहाँ वो रहता था उससे 10-12 किलोमीटर दूरी पे एक सन्यासी रहता था झोपड़ी में। उसने कहा मैं क्या करूँ, मेरे को रोज़ धमकी मिलती है मैं सन्यासी बन जाऊँगा, मैं अपनी तरफ से बढ़िया बनाती हूँ। सन्यासी ने कहा इस बार जब वो धमकी देना तो तू कह देना जा बन जा सन्यासी। तो अगले दिन उस आदमी ने फिर धमकी दी, बोला खाना बढ़िया नहीं है मैं सन्यासी बन जाऊंगा, तो उस महिला ने कह दिया जा बन जा, हम तो अपना घर अपने आप चला लेंगे। तो उसने देखा ये क्या, जब भी सन्यासी बनने की बात कहता था ये उदास हो जाती थी, रोती थी, और आज तो इसने बड़ी दिलेरी से कह दिया सन्यासी बन जा। तो उसको चोट लगी, बोला ठीक है मैं बन के ही दिखाऊंगा, कहती है ना बन जा फिर देखता हूँ इसका क्या होगा, फिर रोएगी, अभी तो कह रही है दिलेरी से। तो उसने जी एक लाठी उठाई, एक लोटा उठाया, बोला मैं जा रहा हूँ। बहन ने भी कहा जाओ, तो पास में वही सन्यासी था, उसी की कुटिया थी, जाके कहता है महाराज अपना चेला बना लो, दुनिया में क्या रखा है, मैं तो आ गया हूँ, मेरा मन नहीं लगता घर बार में, आप जो कहोगे सेवा करूंगा। सन्यासी ने समझ लिया ये वही आदमी है। सन्यासी ने कहा ठीक है मुझे भी चेले की जरूरत है, देख झोपड़ी में कितने जाले लगे पड़े हैं, कहीं कॉकरोच हैं, कहीं चींटियां हैं, थोड़ी सफाई कर देना। तो सुबह सुबह गया था, झाड़ू उठाई और लगा झोपड़ी में झाड़ पोछ करने, चारों ओर झाड़ू लगाई, अंदर लगाई, वो जो झोपड़ी थी उसको भी थोड़ा किया, करते करते दोपहर हो गई, भूख इतनी जोर से लगी, इतनी जोर से लगी। सन्यासी को कहता, महाराज आपके लिए खाना बनाऊं, भूख तो खुद को लगी थी। तो सन्यासी कहता है, देख भाई मेरा तो आज है व्रत, मैं कुछ खाने वाला नहीं हूँ, तेरे को अगर भूख लगी है तो ये सामने नीम का पेड़ है, इसकी कच्ची कच्ची कोपलें बहुत अच्छी हैं, तो वो खा ले, शाम को फिर देखेंगे जो होगा। अब बेचारे को नीम के पत्ते की बात सुनी, खाना तो बाद की बात थी, सुनते ही मुंह कड़वा हो गया, बोला ये कहाँ के फंसा मैं, मैंने तो सोचा था सन्यासी मालपुए खाता होगा तो मुझे भी खिलाएगा, अब ये सुबह से तो मैंने झाड़ू लगाई थक गया और अब मैं नीम के पत्ते खाऊं, तो झोपड़ी के पीछे से बिना बताए और घर में आ गया। तो बहन ने देखा कि आ गया घर में वापस, वो तो समझ गई थी। तो इस वैराग्य को क्या कहेंगे, किसी आकर्षण में कोई प्राप्ति हो जाएगी, इस लालच में अपन एक जगह से दूसरी जगह गए, लेकिन अल्पकाल का ये आकर्षण धोखे के साथ खत्म हो जाता है, तो इसको अपन कोई वैराग नहीं कहेंगे। एक दूसरी प्रकार का वैराग है, वो राजा भर्तृहरि को आया था। आपने राजा भर्तृहरि की कहानी सुनी होगी, बहुत अच्छा राजा था, प्रजा से उसका बहुत प्यार था, प्रजा में बड़ी शांति थी, द्वापर युग के शुरू का राजा है ये, इसलिए राजकार्य में कोई समस्या नहीं थी, पत्नी भी उसकी बड़ी सती साध्वी थी। लेकिन एक गुरु था, उस गुरु के मन में आया कि अगर ये वैरागी नहीं बनेगा और राजकाज में ही फंसा रहेगा तो इसका भाग्य कैसे बनेगा, तो उसने एक युक्ति लड़ा करके एक घोड़े के व्यापारी को भर्तृहरि के यहाँ भेजा, और वो घोड़े का व्यापारी बहुरूपिया था, रूप बदलना जानता था तो गुरु का चेला ही, और उसने बड़ी तिकड़म भिड़ा भिड़ा करके, और कहानी तो बड़ी लंबी है लेकिन सार ये है कि उसकी रानी को फुसलाया और फिर रानी ने राजा को धोखा दिया। तो राजा के सामने जब रानी के धोखे की बात आई तो उसका दिल टूट गया, तो उसने सोचा कि अब मैं क्या करूँगा राजा बन करके, मुझे सन्यासी बन जाना चाहिए, और अपना राजपाट छोड़ करके सन्यासी बन गया। अब भर्तृहरि सन्यासी बन गया, भगवा कपड़े पहन लिए, शहर छोड़ दिया, राजधानी छोड़ दी, एक कफनी टांग ली, और जैसे जैसे गुरु ने कहा यहाँ भिक्षा मांग, वहाँ ब्यांग, वहाँ चला जा, ऐसी यात्रा करने लगा। तो एक चांदनी रात में एक जंगल में से गुजर रहा था, चांदनी रात थी, और जंगल में उसने देखा कि कोई चीज़ माणिक की तरह से चमक रही है, मोती माणिक होते हैं ना, माणिक की तरह से चमक रही है। तो राजा था, माणिक मोती हीरे जवाहरात सारा जीवन उसके खजाने में थे, तो सारा जीवन उनसे खेला था, आकर्षण था, प्यार था, तो सोचा जंगल में ये माणिक क्या करेगा, मैं इसे उठा लेता हूँ। तो कहाँ तो सन्यासी था, इतना भरा खजाना माणिकों का छोड़ के आया था, लेकिन फिर माणिक याद आ गया, और एकदम ध्यान से हट करके वो जो पड़ा था उसके ऊपर ऐसे हाथ मारा। जब हाथ मारा तो हाथ गंदा हो गया, क्यों, क्योंकि वो वास्तव में माणिक नहीं था, किसी ने पान खा करके थूका हुआ था, और चांदनी रात में वो माणिक की तरह से चमक रहा था। तो जब हाथ मैला हो गया तो राजा भर्तृहरि ने अपने माथे पर हाथ मारा, भर्तृहरि तू एक धोखा और खा गया, एक धोखा खा के तो तू घर से निकला था, लेकिन अब तूने दूसरा धोखा भी खा लिया, क्योंकि पहला धोखा खाया था महारानी से, इसलिए उधर तो फंसने की बात नहीं थी, लेकिन धन ने तो अभी तक धोखा दिया ही नहीं था, तो एक चीज से धोखा खाया उससे तो वैराग आ गया था, धन से तो धोखा नहीं खाया था, उससे वैराग नहीं आया था, वो जबरदस्ती छोड़ना पड़ा था, और जिस चीज को हम जबरदस्ती छोड़ते हैं वो जीवन में कभी ना कभी फिर हमें आकर्षित कर ही लेती है। मजबूरी बस छोड़ा, राजपाट छोड़ेगा तो धन भी छोड़ना पड़ेगा। परिणाम क्या निकला कि जो अंदर की सूक्ष्म आकर्षण की भावना थी धन के लिए, राजा था, प्यार था, तो वो एकांत में वहां प्रकट हो गया। तेरे को कौन देख रहा है, तू तो सन्यासी है, जंगल में है, कौन देख रहा है, इसको उठा भी लेगा तो कौन बोलने वाला। लेकिन वहां भी धोखा खा गया, नकली चीज। तो भर्तृहरि ने फिर प्रण किया कि जब मैंने इतना बड़ा राजपाट छोड़ा तो आगे से एक चाहे मोहर पड़ी हो, चाहे मोती पड़ा हो, हीरा पड़ा हो, अब मैं आगे से नहीं उठाऊंगा, मेरे किस काम का, मेरे लिए तो मोती और मिट्टी एक बराबर है। तो इसको कहते हैं हद का वैराग। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को क्या सिखाया, बेहद का वैराग। बेहद के वैराग का मतलब क्या है कि इन आंखों से जो भी कुछ दिखता है, हर दिखने वाली चीज को झूठा समझो। शास्त्रों में लिखा हुआ है जगत मिथ्यम ब्रह्म सत्यम, ये जो संसार है आंखों से दिखता है ये झूठा है। ब्रह्म सत्यम माना जो नहीं दिखता है, वो लोग तो भगवान को ही ब्रह्म कहते हैं ना, लेकिन ब्रह्म लोक है वो भी तो सत्य है, बाबा भक्ति में उसको सचखंड कहा गया है। आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, सचखंड सत्य है, तो वो तो तीनों चीजें आंखों से दिखाई नहीं देती, सत्य वही है। सत्य के दो अर्थ हैं, एक सत्य माना सच्चा, दूसरा अविनाशी, जिसका नाश ना हो। तो इन आंखों से दिखने वाली हर चीज तो नाशवान है, उनमें से अगर किसी भी चीज के साथ अटैचमेंट है तो धोखा खाएंगे। इसलिए कहते हैं झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जिन्हें काया, अपनी काया से शिकायत रहती है। बहुतों को शिकायत रहती है ना, कई लोग कहते हैं कि मेरी नाक ऐसी क्यों है, कई लोग कहते हैं मेरी आंख ऐसी क्यों बनाई भगवान, कई कहते हैं कि मुझे ठिग्गा क्यों बनाया, लंबा क्यों नहीं बनाया। भाइयों को भी, बहनों को भी, सबको शिकायत रहती है। वास्तव में ये जो शरीर है जो इस समय हमारे पास है, हमारे पास 84 शरीर हमको मिलते हैं एक कल्प में, उसमें से 83 शरीर नष्ट हो गए, ये 84वां है, किसी का 83वां भी हो सकता है। तो ये जितने भी शरीर हमको मिलते हैं, सतयुग और त्रेता के बाद द्वापर युग से जो शरीर मिलते हैं उनको कहते हैं कर्मजन्य। जैसा हमने कर्म किया वैसा हमको शरीर मिल गया। जैसे दुनिया में बाजार में आप चाहते हो जाते हो तो जो चीज मिलती है उसको कहते हैं धनजन्य। जितना आपके पास धन था वैसी आपको चीज मिल गई। अब यूं तो कुर्सी 1000 वाली भी मिलती है, लेकिन आपकी पॉकेट में 200 रुपया था तो आपको 200 रुपए वाली कुर्सी मिलेगी, 1000 वाली कैसी मिलेगी। तो ये जो शरीर है इसको कहते हैं कर्मजन्य। आपने जैसा कर्म किया वैसा शरीर मिल गया, जैसा दाम वैसी चीज। अगर अपने पास दाम अच्छे होते, कर्म अच्छे होते तो कृष्ण जैसा शरीर मिलता। सतयुग में अच्छे दाम थे, कृष्ण जैसा शरीर मिला, राधा जैसा शरीर मिला। फिर दाम घटते गए घटते गए, द्वापर युग में सारी पूंजी खत्म हो गई। तो जब पूंजी खत्म हो गई तो जो थोड़ी बहुत पूंजी जैसी भी थी, तो ये कर्म बंधनी शरीर है, कर्म का हिसाब किताब चुकतू करने के लिए मिला हुआ शरीर है। जैसे कैदी को कोठरी मिलती है तो कैदी से कोई पूछता है कि बता भाई तेरे को कौन सी कोठरी पसंद है, नहीं, उसको अपनी सजा भोगनी है इसलिए कोठरी मिली है, पसंद आए ना आए उसमें रहना ही पड़ेगा और सजा पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन कोई अफसर हो, कोई गेस्ट हो, उसको तो पूछते हैं देखो भाई हमारे 4 बंगले हैं, तुमको कौन से बंगले में रहना है। तो द्वापर युग के बाद जो शरीर मिलता है वो कर्म का हिसाब किताब चुकतू करने के लिए मिलता है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे कर्मों के हिसाब ज्यादा उलझते हैं। तो द्वापर के शुरू में फिर भी ठीक मिला, उसके बाद तो फिर कला उतरती गई उतरती गई उतरती गई। अब जो कोठरी मिली है, ये कोठरी है शरीर, एक कैदी को कोठरी मिली हुई है। किस लिए मिली हुई है? हिसाब चुकतू करने के लिए। लेन देन है, चुकतू करो। बच्चा है आपके घर में, क्यों आया? जन्म से बीमार है, हर महीने आपको 2000-3000 खर्च करना पड़ता है, आपके घर में क्यों आया? इतने सारे घर थे, वहाँ चला जाता। लेकिन पिछले जन्म का हिसाब है, आपसे चुकतू करके ही रहेगा, राजी राजी करो चाहे नाराजगी से करो। तो इस शरीर में आप आए तो बच्चा भी पीछे पीछे आ गया हिसाब चुकतू करने के लिए। तो ये शरीर कर्म बंधन वाला शरीर है। कर्म बंधन वाली चीज मन पसंद नहीं मिल सकती, जैसी मिली उसी में राजी रहना पड़ेगा। अब बाबा कहते हैं बच्चे इस आखिरी शरीर में बैठ करके आप इतना पुण्य कमा सकते हो कि सतयुग का शरीर आपको मनपसंद मिले। अब आप बाबा को कह सकते हो कि बाबा मुझे कृष्ण जैसा शरीर चाहिए, राधा जैसा शरीर चाहिए, मिलेगा ही, गारंटी है। उसके किसी अंग में कोई डिफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी आपने सतयुग वाले शरीर के लिए कमाई कर ली यहां बैठे बैठे, तो अभी की कमाई 21 जन्म चलेगी, शरीर को रोग नहीं होगा, शोक नहीं होगा, बुढ़ापा नहीं होगा। लेकिन ये अंतिम शरीर भी बड़ा भाग्यवान है। क्यों भाग्यवान है? क्योंकि इसमें बैठ के हम आगे की कमाई कर रहे हैं। इसलिए जैसा भी है इसके साथ दो बातें करनी है। पहली बात, इसकी संभाल बहुत अच्छी करनी। देखो, जो घोड़ा कमाई करता है मालिक उसको चने ज्यादा खिलाता है, जो गाड़ी टैक्सी कमाई करके लाती है उसको मालिक बहुत अच्छे से पहुंच के रखता है, दिन में 1000-2000-5000 कमाती। तो ये कमाई वाली टैक्सी है, बढ़िया घोड़ा है, इसलिए इसकी संभाल करो, जितना लंबा चल सकता है लंबा चले। बाबा कहता है संगम युग में लंबी आयु होगी तो कमाई करोगे। लेकिन दूसरी बात, इससे अटैचमेंट नहीं रखनी है। इसलिए कहा झूठी काया, ये झूठा है, जाएगा, जाना ही है। इसे कमाई करो, इसकी संभाल करो, लेकिन इससे ममत्व मत रखो। और जो व्यक्ति कमाई कर लेता है उसको ममत्व नहीं रहता। अब मान लीजिए आपने एक घोड़ा खरीदा 50,000 का और उससे आपने 50 लाख कमा लिए। अब उसने शरीर छोड़ दिया तो आपको दुख थोड़े होगा, आप कहेंगे मुझे 50 लाख दे गया भले जाए। लेकिन जो लोग कमाई नहीं करते, 50,000 का घोड़ा और रोज उसको 5,000 का खिलाते हैं, पीठ फिरा देते हैं हाथ और बिठा लेते हैं, फिर वो जाएगा तो रोएंगे, कहेंगे अरे हमने तो जीवन भर इसको खिलाया खिलाया, कमाई तो कुछ हुई नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे बेहद की वैराग्य वृत्ति, रहो भी बीच में, कमाई भी करो, लेकिन राग मत रखो, चाहे देह है चाहे देह के संबंध। जो देह के संबंध है ना, वो भी कर्म बंधन वाले। आपसे पूछ के थोड़े कहा बाबा ने कि बताओ कौन सी माता चाहिए, मैं उसी के गर्भ में भेज दूंगा, बताओ कौन सा भाई बहन चाहिए, वही तुम्हारे घर में भेज दूंगा। नहीं, हमसे पूछा नहीं गया, जिनके हिसाब किताब थे वो हमारे पीछे पीछे आ गए, कुछ हमारे से आगे आए हुए थे, कुछ हमारे पीछे पीछे आ गए, रहना उन्हीं के बीच में पड़ेगा, क्योंकि वो भी हिसाब किताब चुकतू करने वाले, लेने वाला ले जाएगा, देने वाला दे जाएगा। ये आखिरी जन्म है, इसके बाद लेन देन का हिसाब खत्म है। इसलिए बड़ा तीव्र गति से लोग ले दे रहे हैं, कहेंगे एक ही साथ सारी मुसीबतें आई, अरे एक ही साथ सारे कर्ज चुकतू करने हैं ना, इसलिए एक साथ, आगे टाइम तो है नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं ये बड़ा इम्पोर्टेंट पीरियड है, देह के संबंधों से भी थको मत, भारी मत हो, उनसे भी प्यार से चुकतू करो हिसाब किताब, बस आखिरी पीरियड है। इसके बाद तो ये 5,000 साल के बाद ही मिलेंगे, कोई 5,000 साल तक विदाई ले तो वो कितना प्यारा लगता है, अरे भाई इससे अच्छे से मिल लो, फिर ये 5,000 साल के बाद ही मिलेगा। इसलिए बाबा को कहते हैं ना कि बाबा 5,000 साल के बाद मिलेगा, ये संबंधी भी आपको 5,000 साल के बाद ही मिलेंगे, उससे पहले मिलने वाले नहीं है। इसलिए इनके साथ भी जैसे भी हैं प्यार से निभाओ, लेकिन अंदर से वैराग्य वृत्ति। तो काया भी झूठी है, संबंध भी झूठे हैं, लेकिन उनसे निभाना भी है और उनके साथ बहुत मेल जोल से रहना भी है, और उनके बीच में रहते हुए बाबा को याद भी करना है। संपत्ति तो झूठी आई, संपत्ति कहती है तुम नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, मेरे लिए तो हजार है, तुमको मेरे से ममत्व है, मुझे तुमसे कोई ममत्व नहीं। इसलिए काया भी, धन भी और संबंध भी तीनों असत्य हैं। सत्य केवल आत्मा और परमात्मा है। और बाबा कहते हैं इन झूठी चीज़ों से मन नहीं लगाना, सत्य बाबा के बच्चों को सच्ची चीज़ों में मन लगाना, इसका नाम है बेहद की वैराग्य वृत्ति। ओम शांति।